ശ്രീമന്മദനഗോപാലം ബൃംഗാരണ്യപുരന്ദരം ശ്രീഗോവിന്ദം പ്രപദ്യേഹം ദീനാനുഗ്രഹകാരകം വന്ദേ കുന്ദമരവിന്ദദലായകാക്ഷം കുന്ദേന്ദുശംഖദശനം ശിശുഗോപവേഷം ഇന്ദ്രാദിദേവഗണവന്തപാദപീഠം വൃന്ദാവനാലയമഹം വസുദേവസൂനം നവജരധരവരണം ചന്ദ്രകോദ്ഭാസികരണം വികസിതനലിനഹാസ്യം വിസ്ഫുരം മന്ദഹാസ്യം കനകരുസുകുലം ചാരുഗർഭാവശൂലം തനപ്പു നിഖിലസാരം നോരുകുമാരം വംശീ വിഭൂഷിതകരാണവനീരഗാഭാത് ീകാംബരാവരുബിംബഫലാധരോഷ്ടാത് പൂർവേന്ദുസുന്ദരമുഖാവരവിന്ദനേത്രാത് കൃഷ്ണാത് പരം കിമിതു തത്വമുഹം ശ്രീഹരിഃ. അഖില ചരാചര വിശ്വകെ രൂപ്യ ഹൃദസ്ത് ശ്രീ ഭഗവാൻ കെ നാഥേ ആപ് സബ്കെ ചരണം മേര നമസ്കാര. ബഹത് ലോക് ബെ ബെ ലോക് ഛിപ്കർ ബോലാ കത്തെ ഹെ ഛിപ്കർ ബോലാ കത്തെ ഹെ ഭഗവാൻ കെ അവതാർ ഭി ഛിപ് ഛിപ്കർ ബോലോ. ജഹാ കിസി ദൈത്യ കോ അസുര കോ മാർനേ കി ലീലാ ഹെ വഹാ തോ ഛിപ്കെ കൈസെ ബിചാരേ. പർ ഭഗവാൻ രാം ജബ് ബൻ കെ ആയേ മര്യാദാ പുരുഷോത്തം तो बड़े छिप छिप कर रहे, कहीं कहीं प्रकट हो गया. अभी हमने दो चित्र देखे तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई ये राम जो है तो कुछ संकोची से मालूम होते हैं इनका चेहरा, और ये श्याम जो है इन्होंने बेधड़क से बैठे हैं ऐसे बिना संकोच देखे. तो ये भगवान श्याम सुंदर जो हुए ना, ये राम में और श्याम में कोई अंतर नहीं है. जो राम है वही श्याम है, जो श्याम है वही राम है, और न उनके और रूपों में कोई अंतर है. पर वो लीला विलास का भेद तो है ही. तो जैसे अपने आप को खुल करके उन्होंने कहा, बहुत जगह कहा, और ऐसा कहा कि दूसरे आदमी कहने में सकुचाते हैं. और ये तो जानते ही थे कि भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, कृपालज्ञ हैं, कोई बात छिपी तो है नहीं कि गीता का सर्वत्र प्रचार होगा. ये तो जानते थे, नहीं जानते थे, जानते थे ही. अब अर्जुन के सामने छिपा छिपी होकर के बात कही बहुत, अभी स्वामी जी कहे कौन गोफल ही. तब जानते थे कि लोग तो जानेंगे ही, पर इनको जानने की परवाह नहीं, बेशर्म हदी है. अपने लिए अपनी तारीफ, और इतनी बड़ी तारीफ कि सारे धर्मों की अवहेलना करने की आज्ञा. ये महाराज ये इसीलिए टीकाकार लोग बहुत डरते हैं, और उनका डरना सच्चा है कि लोग धर्म को छोड़ देंगे और शर्मा देते उनकी होगी, उनको दोनों तरफ से मारे जाएंगे. तो वो टीकाकार ठीक कहते हैं, पर वो अर्थ भी स्वारस्युक्त है कि भाई धर्मों के त्याग की बात नहीं, धर्म के आश्रय के त्याग की बात है, एक आश्रय ग्रहण के बाद. पर यहां शब्दों में कोई गड़बड़ी नहीं है. देखो घर में एक बचन लेना काय बचन मन पति पद प्रेमा, ठीक इसी भाव से वो कहते हैं खुला खुला महाराज कि सब धर्मों को छोड़ दो, परित्यज्य सर्वधर्मान. कहीं इसके अर्थ में गड़बड़ हो तो बताइए. सब धर्मों को छोड़कर धर्मों को रहकर शरणागति होती नहीं. सब धर्मों को छोड़कर नाम एकम शरणम बजा, मेरे एक के शरण हो जा, एक दो नहीं. कहीं पाप वाप का भय मन में तो रखना नहीं कि पाप का भय भी एक आश्रय है, और क्या है. तो इसको इसको मैं धो डालूंगा। तो ये बात कहां कही कि पहले ऐसी बात कह चुके जो कहने वाले को शर्मिंदा करने वाली। भला भला आदमी कोई कैसे कहे, दस आदमियों में भी नहीं कह सकता और अकेले में भी कहते बहुत सुखचाता है कि ऐसी बात कहें और कल कोई विद्रोही हो जाए तो हमारा धंधा फोड़ देगा। मन मना है मद भक्तो मदियाजी नाम नमस्कार, कोई बात बाकी रखी क्या? मन मुझे दे दो, सब दे दिया। बोले मन तो दे दिया पर तन सेवा, भजन का अर्थ है सेवा, भक्ति का अर्थ है सेवा, सर्वात्म समर्पण पूर्वक अपने इष्ट देव के मनोनुकूल आचरण वाला जीवन बन जाए उसका नाम भक्ति है। तो मेरे भक्त बने और आगे बढ़े स्थूल में और आए, मन की बात नहीं। नदिया जी बोले पूजा उजा की सारी मुसलिम मुसलिम जो जो व्यवस्थाएं हैं सब तो रख दिया। बोले नास्तिक बोलता है क्या? और बड़ी मजे की बात, सबको अलग रख दो। डर लगता है विष्णु का समझा बंदन भद्र मस्त कह दिया तो हम लोग कहें तो हमारे लिए तो पाप ही है, कहना पाप और ऐसा करना भी पाप। पर जहां पाप पुण्य की सीमा से परे कहीं जाते वहां की बात गोपनीय बात। तो कहा मां नदी आजी केवल मेरी पूजा करने वाले बनो, जो करे मेरी पूजा। स्वकर्मना तुम्हें बच्चे को व्यापक रूप से कह गए, तुम कहा यहां पर तुम अभ्यर्थ है तमो शरण गच्छ, जो स्वामी जी कह रहे थे छिप कर कहने की बात, तमो शरण गच्छ, यहां तमो नहीं है, यहां वो उस दूसरे की किसी की पूजा नहीं। स्वकर्मना तुम अभ्यर्थ व्यापक बात है ना, तुम जो सर्वव्यापक है उसकी तो सर्वा क्या है तम, जिससे सब निकले जो सब में व्याप्त उस व्यापक भगवान की पूजा कर उसकी। यहां वो उसका वाचक था इसमें आ गया, बोल उसकी भी पूजा छोड़ दो। साफ बात है महाराज, मदियाजी मेरी पूजा कर, मेरी पूजा करने वाले बनो और हाथला जोड़ना हो, नमस्कार करना हो, दंडवत करना हो तो मुझे करो। लोग कहें कितनी ईर्ष्या, एक हिंदी के लेखक हैं, नाम उनका नहीं लेता, बड़े प्रसिद्ध थे वो पहले, एक लेख लिखा उन श्लोकों पर और ये बताया कि जो श्री कृष्ण हैं ये बड़े कूटनीतिज्ञ रहे, जिनको अंग्रेजी में डिप्लोमेट कहते हैं, कूटनीतिज्ञ रहे, बड़े चालाक। उन्होंने गीता के रूप में बेचारे अर्जुन को मोह लिया, हिप्नोटाइज कर लिया और हिप्नोटाइज करके मोह करके और अंत में सब जब देखा कि अब ये बिल्कुल हमारे बस में हो गया तब अपनी बात कह दी स्वार्थ की, मेरी पूजा कर और मुझे हाथ जोड़ और मैं कहीं से कर मेरे मन मेरा भक्त बन जा और मन मुझे दे दे। तो उस बेचारे से कहलवा लिया आखिर के तुम जो कहोगे सो करेंगे। और इसका था इसके मन में थी बड़ी बुरी अभिसंधि, ये देखता था कि कौन ये हमारे आदमियों के समान कोई वीर न बना रहे। तो ये वीर नीति इसकी, तो देखा कि ये जब लड़ेंगे आपस में कोई पांडव तो तमाम राजा आ जाएंगे, सब मर थक जाएंगे, हम बड़े रह जाएंगे। इस दुर्भसंधि से कृष्ण ने ये सब जाल रचा। ऐसा ये भूल गए, कहने वाले भूल जाते हैं, फिर याद में तो किसने मरवाया को किसने मरवाया, फिर जब जानदारी ने साथ दिया तो कहा कथा सुखी माता तुम्हारा साथ सफल हो, मैं चाहता था कैसे वे मरे, तुम निमित्त बन गई, बड़ा अच्छा हुआ। तो ये बात समावेश नहीं जान में रखते। तो मतलब कहने का ये कि इतना खुलकर बोले जगह एक जगह नहीं, उन्होंने तो ऋषि द्वारा पूजा भी स्वीकार की, पूजा करते भी रहे और स्वीकार भी करते रहे, कहते रहे सब, कहने लगे जहां मौका लगा मैं कह दिया कि हम वो हैं भला। और गीता में तो महाराज खुल गए, वो सारे इदम को अपने में ले लिया, ये भी मैं और वो भी मैं, जिसको जिस आत्मा को अहम कहते हैं स कहते हैं वो भी मैं, और जो दूसरा आवेदन प्रपंच ये भी मैं, मेरे सिवा कुछ है नहीं, मैं ही खेलता हूं और मुझ में खेलता हूं। और ऐसा नहीं कहा कि और विशेषता है कि व्यापक रूप से खेलता हूं, नहीं, मैं श्री कृष्ण श्याम सुंदर नटवर बसु ये मैं नए स्वांगों में खेलता हूं। तो इस प्रकार के लिए लीला बिहारी भगवान तो यहां परम गोपनीय के बाद हम सर्वभूतन स्वामी जी कह रहे थे अपने को तो ये सब रहस्य तो पता है, तो सर्वभूतन का यही मालूम होता है रहस्य, ऐसा दिखता है भगवान का रहस्य तो भगवान जानते हैं, जो जानने का अभिमान करते हैं ये सब अज्ञान है, तो वो तो वही जानते हैं पर अपनी अपनी आंख से आदमी हर एक चीज को देखता है और उसकी आंख ठीक है, उसके लिए उसकी आंख ठीक, तो ऐसा मालूम होता है इस सर्वगुणतम का कि भगवान ये चाहते हैं कि भाई मेरे साथ यदि किसी को प्रीत करनी हो, मुझसे यदि किसी को प्रेम करना हो तो जगत के सारे कर्तव्य अकर्तव्यों से उठना पड़ेगा, जगत के सारे भयों से और सारी आशाओं से मुक्त होना पड़ेगा, जगत की सारी क्रियाओं से अक्रियाओं से अलग होना होगा, क्रिया और अक्रिया दोनों में उसका पूजन, त्याग और भोग दोनों से उसका पूजन, छोड़ने और करने दोनों से उसका पूजन, उसके सिवा जीवन में कभी किसी समय कोई दूसरा न तो अपना न कोई प्राप्तव्य और न कुछ करने योग्य वस्तु, प्राप्त करने योग्य वस्तु, सेवन करने योग्य वस्तु, बस एकमात्र परम प्रेमास्पद भगवान और मैं। कल शाम को किसी ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर तो देना बनता नहीं, प्रेम वैचित्र की क्या दशा होती है ये प्रश्न तो मैं जानता नहीं, तो जितना कुछ कह सकता हूं वो समझ में आना मुश्किल, लेकिन उसके कुछ नजदीक की बात, भगवान के प्रति समर्पण जब होता है इस प्रकार और इस प्रेम के राज्य में, तो वहां एक समुद्र होता है प्रेम का। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक समुद्र होता है प्रेम का नारायण, वो समुद्र जहां उसका तल है वहां तो वो सर्वथा प्रशांत है, कलमी सर्वथा प्रशांत है, वहां पर न दुखक्षोभ है न तरंग है न लहरियां हैं, परंतु वो समुद्र वो जो प्रशांत महासागर है, ये आज वाला प्रशांत महासागर नहीं, पैसिफिक सी नहीं, ये नहीं, वो जो प्रशांत महासागर है वो इतना विलक्षण है कि उसी सागर में अनवरत नित्य नगमग तरंग मालाएं नाचती रहती हैं, तो वो जैसे शांत है उसी प्रकार वो नाचने वाला भी है, वो जैसे अनंत है उसी प्रकार अंत की लीला करने वाला भी है, वो जिस प्रकार अगाध भी है वो छलकने वाला भी है, वो जिस प्रकार निस्तब्ध है उसी प्रकार वो महान बोलने वाला भी है, विरुद्ध धर्माश्रयत्व एक साथ एक समय जिसमें रहे उसका नाम भगवान, उसका संकेत है उपनिषदों में, ये दोनों अनुरणिया महतो महिया, जो बोले भी और न बोले भी, जो चले भी और न चले भी, जो खाए भी और न खाए भी, जो व्यक्त भी और अव्यक्त भी, इस प्रकार विरुद्ध धर्माश्रयत्व कि जिसके अंदर नित्य वर्तमान है अमुक ऐसा ही, ये नहीं कहा जा सकता ऐसा भी वैसा भी और ऐसा वैसा कि हमारे ध्यान में न आवे वैसा भी। हमने ऐसा कह दिया और वैसा कह दिया तो ये भी हमने उसको बता दिया कि वैसा है। हमारी बुद्धि के आकलन में जो वस्तु आ गई, ये बुद्धि ग्राह्य का अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि में ब्रह्माता है। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, जो ज्ञान होता है भगवान का, ये अतीन्द्रिय होता है, इंद्रियातीत होता है। तो वह बुद्धि ग्राह्य का अर्थ क्या है? बुद्धि ये समझती है कि अतीन्द्रिय है, कितना है बुद्धि उसकी अतीन्द्रियता का परिचय पाती है, उसके स्वरूप का नहीं। यदि प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि उस ब्रह्म के स्वरूप का आकलन कर ले, उस बुद्धि में यदि वो रूप समा जाए, शब्द का समाया हुआ, पर यूं अगर समा जाए बुद्धि में तो बुद्धि जन्म हुए तो वाचा निवर्तन थे अप्राप्य मनसा सह। ये श्रुति है कि जहां पर वाणी वाचा और मन, मन से बुद्धि भी है, मन से चित्त भी है, ये सब जहां से लौट आते हैं जिसे न पाकर, और निषेद मुख से जिसका वर्णन करते हैं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, उसका आकलन कौन करे, उसको बता दे कौन कि किसकी बाणना। तो ऐसा एक निर्देश कहा जाता है, ये केवल वो तो दिखाने के लिए, बतलाने के लिए कि ऐसा भी और वैसा भी और ऐसा वैसा जो नहीं कहने में आता वो भी। इस प्रकार का जो तत्व है, वो तत्व जहां पर अपना बनकर, वो तत्व जहां पर अपना बनकर, जहां पर अपने गुणों को प्रकट करके, जहां पर अपने गुणों का अलग अवतरण करके जब लीला विलास में प्रवृत्त होता है, तो उसका नाम है श्री कृष्ण, उसका नाम श्री कृष्ण। तो अतएव ऐसा वैष्णव फिलोसफी जो है, वैष्णव के दर्शन ये देखने से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने बड़ा विचार किया है। विचार की धारा अलग, विचार की दृष्टि अलग। वो लादनी संघन और संगत तीन शक्तियां उन्होंने ये विष्णु पुराण में दिया है। तो लादनी शक्ति जो है, ये तो भगवान का जो नित्य आनंदमय स्वरूप है, वो आनंद ही, वो आह्लाद ही एक नित्य निरंतर एक श्री विग्रह के रूप में प्रकट है। हुआ नहीं, वो नित्य प्रकट है और वो नित्य उद्वेलित है, वो नित्य उच्छसित है, वो नित्य उच्छलित है, वो नित्य लीलापायन है, वो आनंद नाचने वाला आनंद, वो शांतानंद ही नहीं उच्छलितानंद ही, वो नर्तनानंद ही, वो संगीतानंद भी, वो विरहानंद भी, वो मिलनानंद भी। इस प्रकार एक वो आनंद आह्लाद जहां प्रकट है, उस प्रकट आह्लाद के श्री विग्रह का नाम है राधा। तीसरा, ये जो लीला धाम है, लीला परिकर है, ये सब के सब जो संबित शक्ति है भगवान की, उसके द्वारा उचित शक्ति, चित शक्ति उसके द्वारा इन सब का प्रादुर्भाव होता है। और जो सत शक्ति है, वो शक्ति लीला के रूप में आकर के प्रकट होती है। लीला परिकर और लीला स्थान, लीला परिकर और लीला, और लीला का क्या का जो प्रधान पात्र है वो तो श्री गोपांगनाएं क्या है? ये श्री गोपांगनाएं जो हैं, ये श्री राधा की काय व्यूह रूपा है। राधा श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप आनंदांश, राधा के शरीर से, राधा के श्री विग्रह से जिनका प्राकट्य हुआ, वे सब के सब श्री गोपांगनाएं, वे सब राधा की काय व्यूह रूपा। ये जो महान नित्य निरंतर लीलाधाम में प्रकट जो महारास है, महालीला विलास है, इसमें ये कायरूपा श्री देवतांगनाओं का नित्य स्थान है। इनमें नए नए साधन सिद्ध महात्मा लोग श्री देवतांगनाओं का स्वरूप प्राप्त करके सम्मिलित होते रहते हैं। जो इस मार्ग के अन्वेषक हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, साधक हैं, अपनाने वाले हैं, वे साधन सिद्धा गोपियों के रूप में होकर के नित्य सिद्ध हो जाते हैं, नित्य पार्षदत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके मूल में राधा, ये शंका समाधान का विषय नहीं है। तो कोई मुझसे शंका करेंगे तो मैं कह दूंगा हार गया, झूठ बोल गया, मुझे झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं, बहुत झूठ बोलता हूं सच। तो इसलिए जरा भी कोई अपने ये कोई बात नहीं, तो शंका समाधान की कोई बात नहीं। जो सुनना चाहे और सुने, न सुनना चाहे न सुने, और सुनकर भी मिथ्या माने अवश्य मिथ्या माने, कोई आपत्ति नहीं, मनवाने की आवश्यकता नहीं। तो वो मैं कह यह रहा, तो कह मैं ये रहा था कि ये जो लीला विलास है, सच्चिदानंद का लीला विलास, इस लीला विलास में जो प्रधान नायिका है वो है श्री राधा जी। अब उन राधा जी ने जहां जहां पर जिस जिस रस का उन्मेष है, होना आवश्यक है, वो सब होता है, उसके आठ रूप माने। पहला रूप है व्यापक, उसका नाम है प्रेम। प्रेम का अगला स्तर है, उसका नाम, ये सब पारिभाषिक नाम है इनके, बहुत बड़े बड़े इनके व्याख्यान हैं, इनके स्वरूप का निर्णय है। फिर होता स्नेह, ये स्नेह नहीं हम जिसको स्नेह कहते हैं प्रचलित भाषा में, जो गुरुजनों का और अपने छोटों के प्रति होता है स्नेह, वो नहीं। ये प्रेम का एक परिष्कृत रूप होता है स्नेह। स्नेह के बाद तीसरा रूप होता है मान। इस मान का नाम सुनकर डर जाते हैं लोग, मान। मान के बाद चौथा रूप होता है प्रणय। प्रणय के बाद पांचवा रूप होता है राग। छठा रूप होता है अनुराग। सातवां रूप होता है भाव। और आठवां रूप होता है महाभाव। ये भाव और महाभाव दोनों प्राय एक ही हैं, परंतु भाव का जहां पूर्ण विकास है, गोपी से जहां राधा भाव की परिणति है, वहां भाव है। उस भाव में फिर दो चीजें प्रकट होती है, जिनका उस प्रेम शास्त्र के अनुसार उनके नाम है मादन और मोहन। तो राधा का मादनाक्ष भाव और राधा का मोहनाक्ष भाव, इसकी फिर बड़ी लंबी चौड़ी, ये लंबी चौड़ी व्याख्या है इसकी, मादन और मोहन की। एक अभी सुनाते हैं, मादनाक्ष भाव में जब अपने में दैन्य का अनुभव होता है, बड़ा एक घटना, श्री कृष्ण चले गए मथुरा, गए जाने के बाद क्या होता है इनके भावों में कि ये समझते हैं कि अब कुछ रहा रहे, श्री कृष्ण अब मिलने के नहीं। भाव आता है कि अब तो जहां मैं देखती हूं अंधेरा रह गया, मुझे जीना नहीं है, जी नहीं सकती, पर एक अवलंबन मिल गया। क्या मिल गया? कि श्री कृष्ण का कृष्णपना नहीं, काला रूप नहीं, जहां तम है, जहां अंधकार चारों तरफ दिखता है, ये अंधियारी जो एक है, अंधियारी, ये एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह श्री कृष्ण की छाया पड़ी, उस छाया में जो कालिमा थी, उस कालिमा वो पूर्व रात के समय के बाद तो श्री कृष्ण तक तो पहुंच नहीं सकी राधा जी, कई तरह के विघ्न थे। तो वो जो छाया की कालिमा थी, छाया थी, उस छाया में जाकर के श्री कृष्ण का अनुभव कर लिया उसने, ये जो काली छाया है, इस काली छाया में उन्होंने कृष्ण का अनुभव कर लिया। अब कहती कि छाया के होते तो करते और मेरे इस योग की ज्वाला से ये सूर्य भी जल गए और चंद्रमा भी जल गए, ये दिन रहे नहीं तो छाया जब सूर्य चंद्रमा से पड़ती है वो चीज रहे नहीं तो रह गया क्या अंधकार, रह गया अंधारी रह गई। ये अंधारी चूंकि कृष्ण को याद दिलाने वाली अंधेरा काला, तो ये मेरे जीवन का आधार रह गया, तो इसी को लेकर मैं जीऊं। उसके बाद जब दैन और फूटता है बड़ी बढ़िया बात है। वो कहती है कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से, श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है, ये तो परम प्रेष्ठ है, प्रार्थना करती है कि हे नारायण, हे भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, जिस ओर मैं जाना चाहती हूं उससे विरुद्ध मेरा एक पैर भी न टिके, तो किस ओर जाना चाहती है ये स्वयं बताती हूं। तो कहती हूं कि मेरा तापमान बढ़ता चला जा रहा है, शरीर की मन की गर्मी जलाने वाली उत्तप्तता, शरीर का मन का तापमान इतना बढ़ता जा रहा है कि वो पास आने वाले को भी जला देगा। तो श्री कृष्ण जिस दूर देश में है, हे भगवान, मुझे उसे ब्रज देश में ले चले। श्री कृष्ण के समीप में मैं पहुंचू, कभी मुझे दूर दूर ले चलो और दूर ले चलो, यदि कहीं मैं मार्ग भूल गई तो श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी, उनके समीप पहुंची तो मेरे तापमान से, मेरे शरीर की गर्मी से वो उत्तप्त वायु हो जाएगी, पवन उत्तप्त हो जाएगा और वो उत्तप्त पवन उस नील कलेवर को झुलसा देगा। हे नारायण, ये न हो, मैं पीछे चलू, दूर चलू। पहले जब मैं ये मैंने कहा था कि वो ऐसी प्रार्थना करती है कि जिस मार्ग में जाना चाहती उस विद्युत में जाऊं, तो लोगों ने यही समझाएगा कि भगवान को जाना चाहती है, दूसरी बात समझ नहीं सकते। पर ये नागनाथ दैन्य का भाव है, वहां वो कहती है कि मैं दूर जाऊं जिससे मेरे उत्तप्त अंगों की जो स्पर्श पाकर जो गर्म वायु है, अति उत्तप्त वायु, वो प्राणनाश के नील कलेवर का स्पर्श न कर सके और वो सुख से रहे। दूसरी भावना करती है, वो कहती है कि मैं जब चलती थी तो मेरे पीछे पीछे झमरों का दल चलता था, गुनगुनाता हुआ, गुंजार करता हुआ, तो मुझे लगता कि ये भूरे सब क्यों उड़ रहे हैं, ये भूरे सब क्यों चले रहे हैं। तो पीछे मैंने जो मुड़ के देखा श्याम सुंदर मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो श्याम सुंदर का जो शरीर है वो दिव्य गंध युक्त है, सौरभित है, दिव्य कमल गंध है, तो उस गंध को पाने के लिए ये भोरे कमान उड़ते जाते थे, इससे मैं समझती थी कि श्याम सुंदर मेरे साथ हैं और मुझसे उनको सुख मिल रहा है, तो तभी तो भोरे गुनगुना रहे। और अब तो श्याम सुंदर गए, तो श्याम सुंदर गए तो मेरे जीवन में जो जीवन था, जो मनुष्य के शरीर को दुर्गंधी से बचाने वाला, जब मर जाता है ना आदमी तो कुछ ही क्षण में शरीर सड़ जाता है, दुर्गंधयुक्त होता है, तो भावना करती है कि मेरे